बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहती शराफ़त हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम अंदाज़े जहाँ में पाक हिंद रवाबित का जायज़ा लेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के हालिया दौरे हिंदुस्तान के बाद एक बार फिर दोनों मुल्कों के सियासी और सहाफती हलकों की तवज्जो बाहमी रवाबित पर मरकूज़ हुई और पाकिस्तान के हुकूमती हलकों ने सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे को कामयाब बताया है और उम्मीद जाहिर की है कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से हालात में मज़ीद बेहतरी आएगी। इस दौरे का एक मुस्बत नतीजा ये निकला है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल और रवाबित के फ़रोग के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर दोबारा जोर दिया जाने लगा है। इसी के साथ एक इत्तला ये भी है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मसले कश्मीर पर भी गुफ्तगू की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए हालात पुरउम्मीद हैं। दोनों ममालिक के आवाम भी अब जंग की बातें नहीं करते बल्कि मसाइल मुस्तकिल अमन के ख्वाहिशमंद हैं और मसाइल के पुरअमन तौर पर हल करने की ख्वाहिश रखते हैं। सियासी और सहाफती हलके भी अमन चाहते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि जब भी दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात में तेज़ी आई है और वो एक दूसरे के करीब आए हैं तो कोई ना कोई वाकया ऐसा रूनुमा हो गया जिसने बेएतमादी की फ़िज़ा पैदा कर दी और क़ुर्बत को दूरियों में तब्दील कर दिया और फिर हालात मामूल पर आने में एक लंबा अरसा लग गया। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन एक तवील अरसे के बाद एक बार फिर अमन, दोस्ती और क़ुर्बत की बात चली है और इसी के साथ दोनों मुल्कों के आवाम में भी बाहमी हालात मामूल पर आने और दोस्ती के फ़रोग की उम्मीद पैदा हो चली है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार अज़हर आब्दी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी आब्दी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हिंदुस्तान के नतायज आपकी नज़र में क्या बरामद हुए हैं?
बज़ाहिर तो जैसे आपने गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा कि दोनों तरफ से बड़ी हौसला अफज़ा बातें सामने आई हैं और तरफ़ैन ने इस मुलाकात को कामयाब करार दिया है। फॉरेन ऑफिस के दोनों जो ममालिक हैं उनके अगर रिलीज़ को या हैंडआउट्स को देखें और दूसरा खारजा सेक्रेटरीज की भी बातें जो हैं वो सुने तो यही लगता है कि बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है और दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जो है वो हौसला अफजा और खुशगवार नज़र आ रही थी। और एक और सिग्निफिकेंट बात जो इसमें है कि ये मुलाकात कोई 40 मिनट जारी रही और उसमें तकरीबन तमाम इश्यूज ही ज़ेर बहस आए। तो इस एक तरफ तो ये पॉजिटिव बात है कि जितने भी इश्यूज हैं खा वो बहुत ही हसास मसला हो कश्मीर का या एक और अहम मसला हो टेररिज्म, दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी का, इन पे बात हो या जो मामूल के ताल्लुकात को बरकरार रखने और उनको और बेहतर बनाने में वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से, तजारत के हवाले से बातें हों, वो सभी ज़ेर बहस आई हैं। तो ये खुशाइन बात है कि जितने भी प्रॉब्लम्स दोनों मुल्कों को दरपेश हैं उसके हवाले से बातें हुई और इसका मतलब है कि दोनों जो लीडर्स हैं वो इन मामलात को समझते हैं, जानते हैं और ये इस बात को भी वो बावर किए हुए हैं कि ये वो मसाइल हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद हैं। लेकिन 40 मिनट की मुलाकात में इन सब का तذکرہ होना ये बताता है कि बहुत ही जिसको कहें इब्तदाई नौइयत की, सरसरी नौइयत की बातें हुई हैं। उनमें जाहिर है कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना जो है वो तो वैसे भी नज़र आ रहा था कि मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी। बातें हुई और इसके बाद जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी यही कहा, और जो पाकिस्तान की तरफ से भी यही बात हुई कि तमाम इश्यूज़ पर बात हुई है जिसमें कश्मीर का इशू शामिल है, और ये फैसला हुआ कि उस पर जो है वो मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। इसके बाद दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी के हवाले से, क्योंकि ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उस पर भी जो है बात हुई। और एक और बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के वज़ीर आज़म को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो कि उन्होंने कबूल कर ली। तो ये भी एक हौसला अफजा मैं कहूँगा पेशरफ्त है, क्योंकि अगर आप जहन में रखिए कि पिछले 7 साल में ये पहला दौरा है किसी पाकिस्तानी सदर का। दुनिया जब कहते हैं कि ग्लोबल हो गई है और जो है वो बड़े दूर के ममालिक भी करीब आ गए हैं, तो ये मुल्क के जो इतने करीबी हैं उनमें 7 साल में सदर पाकिस्तान का या इंडिया के वज़ीर आज़म का एक दफ़ा दौरा करना, ये कोई इतनी खुशाइन बात नहीं है। लेकिन अब जाहिर है कि उन्होंने दावत कबूल की है, तो जल्द ही जो है वो इंडिया के वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। तो बहसियत मजमुई तो ये सारी जो सूरत हाल है ये मुझे हौसला अफज़ा नज़र आ रही है। लेकिन कहते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही हसास हैं और बड़े सर्द गर्म जो हैं इसके दरमियान में आते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी तल्ख रही है। उसकी जो भी वजूहात हैं, जैसे आपने भी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि दोनों मुल्कों के अवाम तो यही चाहते हैं, बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है कि आपस में सुलह और जंग की बात जो है ना हो। लेकिन आप इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों मुल्कों के अवाम का की सोच का एक एक दूसरे के हवाले से मुआनदाना तर्ज अमल भी मौजूद है। और उसकी वजह यही है कि जब भी दोनों मुल्क देखते हैं, 1947 में जब एक ही मुल्क था और पार्टीशन हुई, तो पाकिस्तान के हवाले से थिंकिंग के इंडिया ने पाकिस्तान को या इस तकसीम को कबूल नहीं किया कभी, और इंडिया के हवाले से ये थिंकिंग के पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को जो है अपने लिए थ्रेट समझा। और दोनों के फिर दाखला पॉलिसी और खारजा पॉलिसीज़ भी इसी नुक्ते पर जो है पिछले 60 साल से जो है वो घूमती रही हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि एक मुलाकात में या चंद मुलाकातों में इन मसाइल का हल होना। लेकिन खुशाइन बात यह है कि कम से कम इन मसाइल को समझा गया है, क्योंकि हम देखते हैं अगर गुज़िश्ता बरसों में कश्मीर के मसले के हवाले से हमेशा यही बात होती रही, इंडिया ने ये कहा कि वो हमारा टूट अंग है और उस पर कोई बात नहीं हो सकती, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी उस मसले के हल में। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत कश्मीर के अवाम को मिलना चाहिए। लेकिन अब इस मुलाकात में भी और इससे कबल भी जो इशारे मिलते थे कि इंडिया इस पर बातचीत करने को तैयार है, और पहले भी जितने मुज़ाकरात पिछले चंद बरसों में हुए हैं उसमें कश्मीर एजेंडे पर रहा है, तो ये एक खुशाइन बात है। दूसरा एक बहुत अहम मसला दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी का है, और दोनों ममालिक के हवाले से ये बहुत हसास है। और ये सन 2008 में जो मुंबई में किलिंग्स हुई जिसमें 166 इंडियन जो है वो कत्ल हुए, वो इंडिया पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता है। पाकिस्तान में जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ और दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तानी जो एजेंसीज़ हैं वो इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हसास मसला है। लेकिन आखिरकार दोनों मुल्क के सरबरा जो हैं वो इस बात को समझे हैं और इस मसले को भी उन्होंने एजेंडे का हिस्सा बनाया। तो मेरा ये ख्याल है, और जो भी गैर जानिबदार तजिया निगार हैं, कि दोनों ममालिक को करीब आना पड़ेगा अपने अवाम की खातिर, अपने मुल्क की तरक्की की खातिर। आप देखिए कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और इन ममालिक को मिलाएं, तो इनकी आबादी दुनिया का कोई 40-45% जो है वो बन जाती है, बल्कि चाइना को शामिल करके तो शायद ये 50% के लगभग जाती है। अब आप देखिए कि अगर इन ममालिक के लोग गरीब रहें तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं, ये भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। तो अब दोनों ममालिक को ये समझना होगा कि इश्यूज़ जो हैं वो अब 21वीं सदी में थोड़ा सा बदल गए हैं, और अगर हकायक को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा तो ये खित्ता बहुत बड़ा नुकसान उठा सकता है। जैसे अभी आप हालिया देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, और सिर्फ एक साम्राज्य ताकत के दबाव की वजह से ये मसला आगे नहीं बढ़ रहा। तो इन दोनों ममालिक को ये समझना चाहिए कि बहुत दूर समंदर पार से किसी साम्राज्य को आकर ये क्या हक पहुंचता है कि वो जो इन दोनों ममालिक के प्रॉस्पेरिटी के, खुशहाली के जो मंसूबे हैं उन पर वो असरअंदाज हो। इसके बाद 21वीं सदी के मसाइल ही बदल गए हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला एनर्जी का है, पाकिस्तान को सख्त एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त, और इंडिया की भी जो इकोनॉमी जिस तरह से फैल रही है, आबादी फैल रही है, तो उसको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एनर्जी की जो सूरत हाल है उस पर मुसलसल नज़र रखनी होगी। तो बजाय इसके कि अपने डिफेंस का, जो इंडिया इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है और कोई 13% जो है वो इंडिया डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि तालीम पर 2% खर्च हो रहा है इंडिया जो अपने बजट का खर्च कर रहा है, हेल्थ पर जो है वो 3% भी मुश्किल से है, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तालीम पर 2% खर्च कर रहा है। तो ये कब तक जो है वो इस तरह असलहे पर और इस पर दोनों मालिक जो हैं वो खर्च करते रहेंगे, जब तक कि एक दूसरे को थ्रेट रहेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्योंकि छोटा मुल्क है, इंडिया का तकरीबन यूँ कहिए कि सातवां हिस्सा जो है वो बनता है, इंडिया सातवां, 7 गुना उससे बड़ा है, तो पाकिस्तान तो वैसे भी फिर उस लिहाज से जब इंडिया इतना असला जमा करता है तो इसको एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर जो है वो देखता है। तो ये इन दोनों मालिक को समझना होगा कि अगर वो इसी तरह असलहे पर खर्च करते रहे और इसी तरह जो है वो एक जंग की सी कैफियत पैदा करते रहे, तो जो हालात दोनों मालिक के इस वक्त हैं वो इससे भी बदतर हो जाएंगे। अब आप देखिए दोनों मालिक की 1/4 आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी जिनको एक वक्त का, एक दिन का पेट भरकर खाना मैसर नहीं है। पाकिस्तान का कोई जो लेटेस्ट है वो कोई 23-24% बनते हैं, और इंडिया का भी इससे ज़्यादा बनता है, गोया यानी समझे इंडिया में भी कोई 40 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो एक वक्त का भी पेट भरकर खाना नहीं खाते। पाकिस्तान में भी सूरत हाल जो है वो 23% तक पहुँच गया है पॉवर्टी लाइन की। तो ये कब तक इस तरह से जो है ये चलेगा, ये तो एक सिचुएशन जो है एक्सप्लोजन तक पहुँच जाएगी। तो ये एनर्जी क्राइसिस के प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, अब पाकिस्तान को तो इस वक्त एक्यूट प्रॉब्लम है वाटर का, और ये भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा नज़ा जो है ये बन सकता है या बन चुका है कि वो दरिया के जो माहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, इंडिया उस उन पर डैम्स बनाता है और पाकिस्तान को इस पर सख्त जो है वो एतराज़ होता है। इंडिया भी बहुत बड़ा मुल्क है, ये वाटर क्राइसिस वहाँ भी जो है वो पैदा हो सकता है, जैसे एनर्जी के हवाले से मैंने कहा। तो ये जो मसाइल हैं, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के मसले हैं, इसके बाद एनवायरनमेंट के मसले हैं, तो
जी,
ये दुनिया जो है वो 21वीं सदी में उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो हमें
बहुत
जो एक ट्रेडिशनल, हमने एक जंग की सूरत हाल आपस में पैदा की हुई है
बहुत
वो
बहुत
ख़त्म
शुक्रिया जी।
करनी होगी। इंडिया को भी ये सोचना होगा, इंडिया को पाकिस्तान को दिल से कबूल करना होगा। आप 60-65 साल हो गए हैं, पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है, बहुत से शोबों में तरक्की भी कर रहा है पाकिस्तान, जो 7 दुनिया में पावर्स हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी या बॉम्ब बनाए उनमें पाकिस्तान शामिल है, तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को कि जो लाल इंडिया के लाल किले पर जो है वो परचम बुलंद करना चाहते हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अब नई दुनिया में ये बड़ा मुश्किल है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क को फतह कर ले,
जी बहुत
ये
बहुत
अब
शुक्रिया
दिलों
आप
को
जी
फतह
साहब।
करना चाहिए, तभी ये दोनों मुल्क जो हैं ये को एग्जिस्ट कर सकेंगे और अपने अवाम को सहूलियात फराहम कर सकेंगे, उन्हें गुर्बत के खत से जो है वो ऊपर ला सकेंगे, प्रॉस्पेरिटी पैदा कर सकेंगे, खुशहाली ला सकेंगे। तो ये बहरहाल दोनों, तो अगर इस तनाजुर में सूरत हाल को देखा जाए तो ये मुलाकात बहुत हौसला अफजा रही है,
बहुत बहुत
सारे
शुक्रिया।
इश्यूज पर बात हुई है, और अब ये इस बात की उम्मीद की जाती है कि जब इंडियन इंडिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो इन इश्यूज़ पर फिर कुछ ठोस जो है वो बात होगी और ठोस इकदाम जो है वो लिए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातें होंगी ताकि ये डिफेंस बजट जो है इसको कम से कम किया जाए, हेल्थ पर, साइंस और टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर, इन पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। अब दो जो
बहुत
मसले
बहुत
बड़े
शुक्रिया
मसले
आबदी
हैं,
साहब। जनाब
बाकी
आपसे
मसले
गुफ्तगू
खुद
हमारी
कुछ
जारी
अवाम का
रहेगी।
दबाव भी है, मैं
जी
समझता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान ईरान की जो ये पाइपलाइन का मसला है, कुछ अवाम के दबाव की वजह से, कुछ जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी वजह से, ये इंशाल्लाह उम्मीद है इन पर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन दो बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं जिन पर दोनों मालिक को बड़ा फूंक
जी
फूंक कर
आबदी साहब
कदम रखना
गुफ्तगू हमारी
होगा,
जारी
उसमें
रहेगी आपसे,
एक
इंशाल्लाह हम आपकी तरफ आएंगे। और नाज़रीन अब चलते हैं हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के सीनियर तज़ज़िया निगार ज़फ़र आगा साहब से टेलीफोन लाइन पर राबिता बरकरार हुआ है। उन्हें हमने अपने दिल्ली स्टूडियो में दावत दी थी, लेकिन दिल्ली स्टूडियो और तेहरान के दरमियान राबिता बरकरार होने में कुछ प्रॉब्लम है, इस बिना पर उनसे हम टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़फ़र आगा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी। वालेकुम अस्सलाम।
ज़फ़र आगा साहब, पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी के दौरे हिंद के नतायज से आप किस हद तक मुतमईन हैं?
देखिए, पाकिस्तान से जो हमारे साथी अभी गुफ्तगू कर रहे थे वो तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल चुके हैं,
जी।
लेकिन जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में ताल्लुकात को सुलझाना जो है
जी।
वो मसला है एक जुए शीर लाग का। लेकिन पहली बार ये लगता है
जी।
कि अब कहीं न कहीं वो जुए शीर कम से कम नजर आनी शुरू हो गई। उसकी वजह, उसके एक बड़े बुनियादी वजह है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से पिछले तकरीबन आज तकरीबन 10 बरसों
जी।
में, कम से कम 7-8 बरसों में मुख्तलिफ कोशिशें हुई कि इस आला तरीन सतह के ऊपर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर तरीन हो सकें। इसकी शुरुआत आप वाकिफ हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब वो बस पे बैठकर उन्होंने नवाज शरीफ के वक्त में लाहौर का सफर किया, बस से गए और पहला हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो मीनारे पाकिस्तान तक गया और वहां अपने इजहार की इस बात का इजहार किया कि हम पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम करते हैं। मीनारे पाकिस्तान जाकर अटल बिहारी वाजपेयी गए, नवाज शरीफ से बातचीत हुई और एकदम से ये लगा कि बहुत ताल्लुकात बेहतर होंगे। फिर हालात बिगड़ गए, आप वाकिफ हैं, कारगिल हो गया। उसके बाद तो कारगिल हो गया, गजब हुआ और लगा कि अब एक एक जंग हो गई। कारगिल ये बड़ी खुदा का शुक्र रहा और उसमें दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स ने ये बड़ा मजबूत, मैं कहूंगा कि एक तरह से रोल अदा किया कि वो जंग बढ़ने नहीं पाई। फिर मुशर्रफ साहब आगरा तशरीफ लाए, आपको वाकिफ होगा वही मुशर्रफ साहब जो जो कारगिल के बानी थे वो आगरा तशरीफ लाए, बात बनते बनते बिगड़ गई। फिर कोशिश हुई मनमोहन सिंह जी के दौर में और अब आप वाकिफ हैं कि जरदारी साहब तशरीफ लाए। इस एतबार से अगर देखें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बात बनती है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये वो कयादत है जिसने पिछले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पिछली कयादत के जो तजुर्बे रहे हैं उनमें क्या गलतियां हुई हैं उस मसले को समझने की कोशिश की है। और अब ये कयादत यानी हिंदुस्तान की जानिब से वजीर आजम मनमोहन सिंह और उधर से आसिफ जरदारी साहब, इन दोनों को ये समझ में आ रहा कि भाई आप बड़ी हाई प्रोफाइल कोई शुरुआत करेंगे जैसे कि वाजपेयी जी ने की, वाज के लाहौर से बस जा रहे, लाहौर बस पे बैठ के जा रहे हैं, या मुशर्रफ साहब की तरह शाहजहां के आगरा में तशरीफ ला रहे हैं और 2 दिन बात हो रही है और 3 दिन बात हो रही है और आप ये उम्मीदें पैदा करेंगे कि कश्मीर सुलझ जाएगा और तमाम मामला बस एक बातचीत में हल हो जाएंगे तो आप कभी कामयाब होने वाले नहीं। चूंकि ये लीडरशिप जो है हिंदुस्तान की जानिब हो और पाकिस्तान की जानिब हो बहुत अकलमंदी से अपने इंटरेक्शंस को बड़ा हाई प्रोफाइल बनाए बगैर बातचीत कर रही और इसने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया है बातचीत का। ये इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं दोनों जानिब की कयादत कि कश्मीर सुलझ 2 दिन में सुलझने वाला नहीं, सियाचिन का हल हफ्ते भर के अंदर नहीं निकल सकता, दूसरे जो सियासी मसाइल हैं वो 24 घंटे में नहीं हल हो सकता। इनको ये समझ में आ चुका है इस क़यादत को कि दोनों जानिब एक बहुत बड़ी लॉबीज हैं, बहुत बड़े बाअसर लॉबीज हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात सुधरने नहीं देना चाहती। इसलिए अगर आप सियासी माइंड फील्ड में फंस गए तो आप हो सकते, आपका आप खुद उसके शिकार हो सकते, और तमाम बातचीत की जो कोशिशें हैं वो नाकाम। चुनांचे अब जो मसला है वो हल करने की जो कोशिश है उसका तरीका इन लोगों ने ये अख्तियार किया, इसके बजाय कि पहले कश्मीर सुलझाओ, पहले सियाचिन हल कर लो, पहले दोनों तरफ आवाम को करीब करो, और आवाम को करीब करने के लिए इन्होंने रास्ते ढूंढे। एक तो पहले से चल रहा था कि साहब यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां के लोग यहाँ आएं, ये तो होता चला जा रहा था। नया रास्ता जो तलाश हुआ है, जो मनमोहन सिंह और आसिफ अली जरदारी की तलाश है, वो है तिजारत का रास्ता, जिसमें अभी जब उसी रास्ते के ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहा जब आसिफ जरदारी हिंदुस्तान में यहाँ तशरीफ लाए। 40 मिनट की बातचीत में कहने को तमाम बातों पर बातचीत हुई, लेकिन जो जोर था वो ये था कि तिजारत दोनों मुल्कों में बढ़े। देखिए आप ताकत हैं, ईरान का इंखलाब जो था उसमें बाजार का कितना बड़ा किरदार, नुमाया किरदार पाकिस्तान ईरान के इंखलाब में ईरानी बाजार का था। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान का बाजार और पाकिस्तान के बाजार में आपस में रिश्ते सुधरेंगे तो उसके सियासी नतज भी पैदा होंगे, और दोनों तरफ मुल्क में दो बहुत बड़ी पावरफुल लॉबीज बन जाएंगी जो अपनी क्यादत पर दबाव डालने में कामयाब। मनमोहन सिंह और जरदारी साहब का की कोशिश यही है कि वो तिजारत के जरिए पहले फिजा बेहतर करें, या फिजा बेहतर हो तो फिर कश्मीर जैसे अहम मसलों के ऊपर और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की जाए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत दानिशमंदी का रवैया है, क्योंकि इससे पहले कोशिशें हुई, हमें जैसा मैंने अभी जिक्र किया, जैसे आपके सामने नाजरीन वाकिफ हैं, दुनिया इस बात से वाकिफ है कि तमाम तर कोशिशें जो होती हैं जिनकी शुरुआत सियासत से शुरू होती है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे परवेज मुशर्रफ साहब रहे हों, वो नाकाम हो जाती। उसके उसकी वजह है कि 60 साल की तलखियां हैं, एक दो नहीं तकरीबन 4 जंगों की तारीख है, सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा है, तरह तरह की तलखियां हैं, तरह तरह के मसाइल हैं, फिर 60 सालों बाद दोनों मुल्कों में जो निजाम बना उस निजाम के अपने जाती मफाद अब इस बात में बन चुके हैं, कम से कम होम और यानी इंटीरियर मिनिस्ट्रीज और फॉरेन मिनिस्ट्रीज के कि वो जो कुछ जिस जो हालात हैं दोनों तरफ वो बरकरार रहे। तो इतनी जहां पे मुश्किलें हों वहां पर कोई नया रास्ता तलाश करना होगा मसाइल को सुलझाने का, और वो नया रास्ता तिजारत का रास्ता है, और मैं समझता हूं कि उस रास्ते आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेसी में हमने एक अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, हेज एंड स्लोली, यानी बढ़िए बढ़िए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। तो दोनों मुल्क की क्यादत का फैसला यही है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। चुनांचे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को आप जानते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड में तिजारत के उसमें दर्जा दे दिया है, और उसका नतीजा यह है कि आज जब मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में मौजूद हूँ तो उस वक्त हिंदुस्तान में आज पता नहीं कितने बरसों बाद हिंदुस्तान दिल्ली के प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन का आज ही इनेकाद हुआ है जिसमें पाकिस्तान के ताजिर तशरीफ लाए हैं, और जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के लोग के सामान और अशिया जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को खरीदने का मौका मिल रहा है। और उसमें दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो कोई भी एक कुछ स्टॉल ऐसे हैं कि जिसमें हिंदुस्तान का कोई भी आदमी जा सकता है और वो वहां से सामान खरीद सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ और तो मेरी अहलिया वहां उस एग्जीबिशन में गई हुई है अभी थोड़ी देर पहले, मेरे पास उनका फोन आया था, वो बड़ी खुश थी कि पाकिस्तानी कपड़े बहुत अच्छे हैं और ये तो बहुत अच्छी जगह है, इनको मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हिंदुस्तान के ट्रेडर्स हैं उनसे पाकिस्तान के ट्रेडर्स के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो ये तिजारत का रास्ता जो है वो आवाम को भी करीब ला रहा है, और जैसा मैंने अर्ज किया कि ईरान की तरह दोनों मुल्कों के बाजार की जो कुर्बत आपस में पैदा हो रही है, वो बाजार जो है वो एक नया वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा बन रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। امن کا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب ادھر کا بازار اور ادھر کا بازار ملا کر ایک پل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے ذریعے چل کر معاملات کو، کشمیر جیسے معاملات کو سلجھایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عقل مندی کی شروعات ہے۔ دہلی میں ابھی جو تشریف پر لائے تھے زرداری صاحب، وہ اسی شروعات کی ایک کڑی تھی، بہت اہم کڑی تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے جانے کے دو دن تین دن کے بعد فوراً ہی ہندوستان میں ایک پاکستانی سامان کی ایک بڑی ایگزیبیشن آج دلی میں شروع ہوئی ہے، جس میں دلی والے بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس سے ایک خوشائن ماحول بنے گا، اس سے ایک دونوں ملکوں کے عوام کے ذریعے ایک ریپو بنے گی، رابطہ بنے گا، اور دونوں ملکوں کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ تو جیسا میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اب ہند پاک مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا طریقہ اس قیادت نے اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ ہے تجارت کر کے، اور نیا راستہ تلاش کیا ہے، اور وہ راستہ ہے تجارت کا راستہ، جس کے ذریعے عوام کو پہلے قریب لانے کی کوشش ہے، اور عوام کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے بازاروں میں ایسا رابطہ پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ جس کے سبب دونوں ملک کی حکومتوں پہ دباؤ رہے کہ وہ جنگ کے بجائے امن کی طرف بڑھے۔ اور یہ بڑی دانشمندی کا راستہ ہے۔ اس 21ویں صدی میں ساری دنیا میں سیاست معاشیات یعنی اکنامکس کو پرائمیسی کے ذریعے سیاست بھی ہو رہی ہے، اور یہی راستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو بھی ایک دوسرے کا قریب
لائے گا۔ بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ جی صاحب۔ آپ نے ظفر آغا صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، ان کی گفتگو کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات کی گاڑی آگے بڑھنے کے لیے حالات آپ کو کتنے سازگار نظر آتے ہیں؟
حالات تو یقیناً اس ملاقات کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو سازگار نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ظفر آغا صاحب نے کہا کہ اگر آپ مذاکرات کی ہسٹری میں جائیں تو جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں حالات ہمیشہ ہی سازگار نظر آئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، جو کہ ظفر آغا صاحب نے ابھی فرمایا، اس کی گہرائی میں ہمیں یقیناً جانا ہوگا۔ اب اس میں جو میں ذکر کر رہا تھا پچھلی گفتگو میں بھی، اور وہ سلسلہ منقطع ہوا، اس کا ذکر بھی آئے تو یہ جواب جو ہے مکمل ہوگا، کہ دو مسائل ہیں کہ جن کو بہت ہی احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ بجا فرمایا، بالکل صحیح ہے کہ دونوں ملکوں میں تجارت ہونی چاہیے، بہت مشہور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہمسائے جو ہیں وہ اب ہم چینج نہیں کر سکتے، جغرافیہ تو چینج نہیں کر سکتے، انڈیا اور پاکستان نے مل کے جو ہے وہ رہنا ہے، تو جو اقدامات لیے جا سکتے ہیں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہ تو ضرور لینے چاہیے، اور ایک دوسرے کی ضروریات بھی ہیں، تو تجارت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تجارت کی بات ہوتی ہے، صورتحال خوشگوار ہونا شروع ہوتی ہے، تو اسی وقت معاملات ایک دم بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں ایک عرض کروں کہ جب انڈیا سے یہاں پر صحافی آتے ہیں، فنکار آتے ہیں، ایجوکیشنسٹ آتے ہیں، پاکستان سے ادھر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ عوام تو دونوں ملکوں کے بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عوام بہت اچھے ہیں۔ لیکن میں ایک سروے پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ پاکستان میں کوئی 60% کے 65% لوگوں سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے، تو انہوں نے کہا انڈیا۔ اور جب ان سے یہی سوال اس طریقے سے کیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتر ہونے چاہیے، تو پھر بھی 60-70% لوگوں نے کہا کہ بالکل ہونے چاہیے۔ یہ جو ہے یہ بڑی جس کو آپ کہتے ہیں کہ حساس اور نازک صورتحال ہے۔ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کور ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو وہ لابیز، وہ قوتیں جو دونوں ممالک کے حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں یا ان کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، میں اب وہ ان حلقوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہر طرح کے ہیں، یعنی صرف انتہا پسند یا دہشت گرد نہیں ہیں، اور بھی دونوں ملکوں میں ایسے حلقے موجود ہیں جس میں فوجی حلقے بھی ہیں اور بھی ایسے جو ہیں وہ حلقے ہیں
جی
کہ جو حالات کو معمول پر آنے نہیں دینا چاہتے، وہ پھر ان ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اب اس سے تو انکار نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انڈین آرمی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، तो वो फिर इन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, और अवाम क्योंकि उनका एक पस मंजर जो है एक दूसरे से,
आबदी
जिसको
साहब,
आप कह लें कि जब 47 में पार्टीशन हुई और
जी
उसके बाद जो उस वक्त फसादात हुए और जो हालात हुए, वो एक पस मंजर है। तो जब तक कि इन कोर इश्यूज को हल नहीं किया जाएगा, या कम से कम इनकी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी हर मुजाकरात में, उस वक्त तक ये तिजारत के और इन इकदाम करने से बात बनेगी नहीं, और वो हल्के के जो सूरत हाल खराब करना चाहते हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन एक बात और करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, ये बहुत अहम बात है
हाँ, लेकिन
कि
वक्त थोड़ा सा, थोड़ा मुख्तसर
दोनों
जवाब दीजिएगा।
ममालिक
मीर
एक
वाइज
और
उमर फारूक
बड़ी।
साहब लाइन पर हैं जी। मैं एक सवाल मीर वाइज उमर फारूक साहब से पूछ लूं, फिर मैं आबदी साहब की तरफ जाऊंगा। जनाब मीर वाइज उमर फारूक साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुजाकिरात के लिए अभी गुफ्तगू हमारी हो रही थी, जफर आगा साहब का कहना यह है कि बेहतरीन रास्ता यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को फ़रोग दिया जाए। दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी नज़दीक आएगी, वो आवाम को नज़दीक लाएंगे, और फिर दोनों मुल्कों में एक लॉबी पैदा होगी जो दोनों मुल्कों के रवाबित के फ़रोग के हक़ में होगी। आबदी साहब का कहना यह है कि जब तक कोर इश्यूज़, जो अहम बुनियादी मसाइल हैं, उन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, दोनों मुल्कों के दरमियान क़ुर्बत पैदा होना नामुमकिन है तकरीबन। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
देखिए असूलन जहां तक जम्मू कश्मीर के आवाम का ताल्लुक है, हम भी इस बात की ख्वाह हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक एतमाद और एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो, दोनों मुल्क एक दूसरे के नजदीक आए, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो उसका हमें है, क्योंकि कश्मीर जैसे मसले का अगर हल भी हमें तलाश करना है तो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि दोनों मुल्क जो है इस मसले के हल के हवाले से आगे ना चले। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल सपोर्टिव है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी रवाबित हो, तजारती हो, सियासी हो, सफारती हो, कल्चरल हो, लेकिन जहां तक हमने देखा है कि देखिए माजी में भी ऐसी बातें हुई, पिछले 65 साल की अगर हम तारीख देख लें, एक बहुत बड़ा एक ग्रुप पाकिस्तान में है भी है, हिंदुस्तान में भी है, जो ये कहता है कि भाई फिलहाल आप कश्मीर को छोड़ दें, बैक बर्नर पर रख दें, आप तिजारत करें, आप कल्चर करें, आप स्पोर्ट्स करें। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स माली में भी किए गए हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हम खिलाफ नहीं है इसके कि अगर आप बाकी इशूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं, चाहे आपके पानी के मसाइल हैं, आपके सियाचिन है, सर क्रीक है, लेकिन कश्मीर जैसे मसले को आप अगर ये समझते हैं कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स मसला है, मुश्किल मसला है, तो उसको आखिर पे हल करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट माजी में भी नाकामयाब रहा है और आइंदा भी नाकामयाब रहेगा, क्योंकि जब तक कोर इशू को आप डील नहीं करेंगे, देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हम समझते हैं कि अगर ये बुनियादी मसला हल की तरफ चलता है तो बाकी मसाइल खुद ब खुद जो है वो हल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो सब लिंक्ड है इसके साथ, एतमाद के साथ और ट्रस्ट के साथ। तो हम ये समझते हैं कि 2012 में आज हम बैठे हैं और कश्मीर का मसला अपने 65वें साल में दाखिल हो गया, अब कश्मीरियों की चौथी नस्ल जो है वो इस मसले के साथ जुड़ गई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नई नस्ल भी कह रही है कि भाई हम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लेकिन मसाइल का हल जो है वो हर कोई चाहता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पेशरफ्त करनी है, तो कश्मीर के मसले को हल किया जाए। इसमें से सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि दोनों मुल्कों में जो रुकावट है वो ये है कि ये दोनों मुल्क कश्मीरियों को जो है वो ऑन 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 बोर्ड नहीं ले रहे हैं, लेकिन बायलैटरल बातचीत की अगर हम बात करें 47 से लेकर आज तक कई बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की मुजाकरात हुए, शिमला हुआ, जो है अशखत हुआ, लाहौर हुआ, आगरा हुआ, लेकिन उसमें कभी भी कश्मीरी कयादत या कश्मीरी पार्टिसिपेशन नहीं थी। ये भी एक बहुत बुनियादी वजह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान शायद कोई एक समझौता नहीं हो पाया है। तो हम ये समझते हैं कि आज की सूरत हाल में अगर कश्मीरियों को मौका दिया जाए, आर पार जो लोग हैं, चाहे इस पार कश्मीरी हो, उस पार कश्मीरी हो, ये रास्ते खोल दिए जाए, लोगों को आने जाने दिया जाए, सहूलियात दी जाए,
پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو فروغ دیا جائے, آر پار کشمیری قیادت کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کشمیری قیادت ہی کوئی ایسا راستہ نکال سکتی ہے جس میں کہ ہم پرامن طریقے سے اور میز کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. البتہ میں یہاں پہ ضرور یہ کہوں گا کہ اس میں جو ہے ہندوستان اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی سیاسی بصیرت ہونا لازمی ہے. دیکھیں نا, ہندوستان بھی آج یہ کہتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی وزیر داخلہ ہندوستان کے جہاں جموں کشمیر آئے تھے اور یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کی کہ جموں کشمیر میں حالات بہتر ہوئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سے تو بہتری کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے وہ فوج کو یہاں سے نکالنے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, کالے قانون کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سیاسی طور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, لیکن دوسری طرف سے جو اپروچ ہے وہ ملٹری ہے. اور اب تو پوری دنیا کی بات محسوس کرتی ہے کہ بھائی آپ سیاسی مسائل کا حل تشدد سے نہیں نکال سکتے. آپ کے پاس عرب سپرنگ کی آپ کے پاس مثال ہے, پورے ایک سال سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے عالمی سطح پہ. تو یہ مسائل جو ہیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج اگر آپ اس کا آپ جائزہ بھی لے لیں کہ اگرچہ کشمیر میں عسکریت جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, تقریباً ختم ہو گئی ہے, لیکن کشمیریوں کے جذبات احساسات جو ہیں آج بھی برابر اس تحریک کے ساتھ ہے اور طاقت سے یا تشدد سے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
جی اچھا میر وائز صاحب, کافی عرصے سے کشمیری قائدین خاص طور پر حریت کانفرنس کے رہنما اس بات پر زور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر کے تعلق سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بھی مذاکرات ہوں ان میں ان کو شامل کیا جائے اور مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری قیادت کو شامل کیے بغیر نکل نہیں سکتا ہے. اس تعلق سے آپ کو مثبت اشارے کتنے ملے ہیں دونوں ملکوں کی قیادتوں کی جانب سے؟
دیکھیے بات چیت تو ہماری ہوئی ہے, اب یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک تسلسل نہیں ہے. دیکھیے دوسرا جو پرابلم ہے میں کہوں گا کہ انڈیا پاکستان ڈائلاگ میں وہ یہ ہے کہ چلے اچھی بات ہے زرداری صاحب اور منموہن صاحب ملے جو ہے ہم نے بھی ویلکم کیا, لیکن یہ پھر صرف یہ ہے وہ جو ہم جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک ایونٹ بن جاتا ہے. ہمیں ایک ایونٹ نہیں چاہیے, ہمیں ایک پروسیس چاہیے کہ جس پروسیس کے ذریعے زرداری صاحب, گیلانی صاحب, منموہن سنگھ صاحب اور ان کی جو چاہے فورن سیکرٹریز ہو, فورن منسٹرز ہو, بتدریج ملتے رہے ہیں. سال میں یہ ایک نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی بائی چانس آپ کو اجمیر جانا ہے تو آئیے چلیے بات کر لیجیے, بائی چانس آپ مالی میں ملتے ہیں, آپ سارک میں ملتے ہیں, بائی چانس آپ یونائٹیڈ نیشن میں ملتے ہیں تو چلیے بات ہو جاتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھوس عمل شروع کیا جائے, ٹھوس پروسیس شروع کیا جائے جس میں وقتاً فوقتاً فورن منسٹر, فورن سیکرٹریز, پرائم منسٹر ملتے رہے اور اس مسئلے کے حل کے حوالے سے جو تجاویز ہیں, سجیشن ہیں جو ہم نے بھی دی ہیں, ہم نے دونوں ملکوں کو دی. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارا جو بات چیت کا جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا 2006-2007 میں. ہم آخری بار وزیر اعظم جن سے ملے ہم نے تجاویز پیش کی, ہم نے سجیشن پیش کی, لیکن آج تک ان 6 سالوں میں ایک بھی تجویز ہماری عملائی نہیں گئی ہے. کالے قانون کی آج آپ دیکھیں کہ چلیے حریت کانفرنس کو آپ چھوڑ دیں, ہم تو آزادی کی بات کرتے ہیں, جو ہندوستان نواز جماعت کشمیر میں ہیں وہ بھی آج جو کہہ رہی ہے کہ کالے قوانین کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرم فورسز اسپیشل پاورز کی ضرورت کشمیر میں نہیں ہے, فوج کے آپ کم کیجئے, جو ہے سول انتظامیہ کا رول جو ہے دن بدن بڑھنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. ابھی بھی حکومت ہندوستان کا جو اپروچ ہے وہ کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, دلی سے جو ہے وہ باضابطہ جو ہے وہ کنٹرول پالیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے. ورنہ آپ نے بس شروع کی کشمیریوں کے لیے آر پار, اس بس کا فائدہ تو ایک عام کشمیری کو اٹھانا چاہیے تھا, اس ٹرین کا فائدہ ایک عام کشمیری اٹھاتا, اب اس بس کو آپ نے چڑھنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آپ کو پہلے کلیئرنس چاہیے پاسپورٹ آفس سے, ہوم منسٹری سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, باقی ایجنسیوں سے, پھر جا کے آپ کو پرمٹ ملے گا, آپ اس بس میں بیٹھیں گے. اس سے بہتر تو لوگ اس معاملے کو آسان سمجھتے ہیں کہ وہ دلی جائیں, سفارت خانے کے باہر 2 دن لائن میں بیٹھے, وہاں سے ویزا لیں, پھر لاہور جا کے پھر مظفر آباد جائیں. تو یہ جو ایک ہم امید کر رہے تھے کہ دونوں ملک ایک اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھائی کشمیریوں نے بھی اگر تجاویز دی ہیں ان تجاویز پہ بھی عمل درآمد ہو, ان کو بھی ایسس کیا جائے, وہ خود بھی انیشیٹیوز لیں, لیکن یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں جب تک ایک پروسیس نہیں ہوگا, ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک میکینزم نہیں ہوگا بات چیت کا اور ڈائلاگ کا دونوں ملکوں کے درمیان, اور उसके बाद फिर कश्मीरियों को शामिल करने के हवाले से भी हम नहीं कहते कि भाई खाली हमें ही आप लाइए। हम ये भी मानते हैं कि ठीक है, यहाँ पर अगर और भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी का है, हिंद नवाज जमाते हैं, उनको भी आप बात, उनसे भी आप बात कीजिए, लेकिन बहरहाल इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में जो अक्सरियत लोगों की है वो आजादी पसंद थॉट के साथ है। और आर पार अगर हम कश्मीर की बात करें जो है वो 80,000 80,000 स्क्वायर मुरब्बा मील की हम बात करें, जो 14 अगस्त 1947 को कश्मीर मार्ज वजूद में था, तो उस खत्ते के आवाम को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे सारे मामले में, तो तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाज साहब। आब्दी साहब, आप जो बुनियादी नुकता उठा रहे थे, हमारी दरखास्त है 1.5 मिनट में अगर आप उसे बयान कर दें तो हम शुक्रगुजार होंगे।
बहुत इम्पॉर्टेंट एक नुक्ता था, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जल्द ख़त्म करूँ क्योंकि वो थोड़ा सा तवज्जो तलब है कि कश्मीर का इशू तो है ही कि इससे आंखें बंद करेंगे तो ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं हो सकते, देर पा नहीं हो सकते। एक इशू जो है कि दोनों मुल्क जो हैं वो उन्होंने अब मसले कश्मीर हो या आपस के मसाइल हो, उनका रूट वाया अमरीका कर लिया है। अब ये इंडिया की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान ने भी जो बड़ी बड़ी वहाँ पर फर्म्स खरीदी हुई हैं कि जो इनके इमेज को वहाँ बेहतर करती हैं, वो क्या करने जा रहे हैं अमेरिका में? आपस में मसाइल तय करें, एक बात ये, और फिर एक दूसरे के जो मुआहदे होते हैं उनके खिलाफ लॉबिंग होती है, तो जब ये रूट अमेरिका से बनाएंगे तो अमेरिका का इन दोनों मुल्कों को ये समझना चाहिए, ख़ासतौर पर इंडिया की ये नज़र में होना चाहिए कि अमेरिका की वाहिद सनत इस वक्त असलाह है, वो और तो कोई चीज़ बना नहीं रहा, और जो उसकी इकोनॉमी है वो आप जानते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है, तो वो तो असला बेचने के लिए क्या करेगा। दूसरा एक ये बात समझना चाहिए कि इंडिया जो ये कहता है कि दहशतगर्दी कोर इशू है, अब हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि कश्मीर की तरह दहशतगर्दी अब एक कोर इशू है, तो क्या इंडिया ये नहीं जानता कि तालिबान को, अलकायदा को, सिपाही साहबा को, लश्कर जंगवी को ये किसने बनाया था? ये अमेरिका ने बनाया था।
बहुत बहुत
शुक्रिया। अभी भी ये फंडिंग उसी हवाले से और उन्हीं हलकों से हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
तो क्या इंडिया ने लॉबिंग की है वहां पर इनके सौते खुश करने की? जब तक ये इशू एड्रेस नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में ब्रेक रखना रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आब्दी साहब। जफर आगा साहब, 1.5 मिनट का वक्त है, आब्दी साहब की गुफ्तगू और मीरवाज साहब की गुफ्तगू के तनाजुर में अगर आप कुछ कहना चाहें, 1.5 मिनट का वक्त।
मैं अब ये बहस मैं समझता हूँ तारीखी तनाजर में बेमानी हो चुकी है कि कश्मीर इशू है या दूसरी जो सियासी मामलात हैं वो कोर इश्यूज हैं, ये तय हो चुका है। कोशिश अब इस बात की हो रही है कि बात ये हो रही है कि इन मसाइल को हल करने की जब कोशिश होती है तो वो नाकाम हो जाती है, इसलिए कोई एक ऐसा रास्ता तलाश करो कि जिस रास्ते से इन मसाइल को हल किया जा सके। जरदारी साहब की और परवेज और मनमोहन सिंह की मुलाकात की बुनियादी बात है वो ये है कि इसमें उन मसाइल को हल करने के लिए एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई है, वो रास्ता तिजारत का रास्ता है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अकल बहुत दानिशमंदाना कोशिश है और इसमें कामयाबी होगी, और इस रास्ते से कश्मीर हो या दीगर मसाइल हो उन तक भी हल होने के रास्ते पैदा होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब।
यह था कि दोनों तरफ बड़ी स्ट्रांग लॉबीज हैं, कोशिशें होंगी कि इनको नाकाम बनाया जाएगा, लेकिन अब उन लॉबीज के लिए भी इतना आसान नहीं रह गया कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब चाहें एक दूसरा बम्बई कर लें या कोई और दूसरी
खलिश पैदा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। इसी के साथ हम मजार आबदी साहब और मीरवाइज उमर फारूक साहब के भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@theRateOfSaharTV.ir। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं।